हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 32 एंड 33। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंडस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं वितंतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 11 जिसका शीर्षक है विराट स्वरूप, श्लोक संख्या 32। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता रितेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनेकेषु योधा। कालोस्मि लोकक्षय कृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता रितेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनेकेषु योधा। कालोस्मि लोकक्षय कृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता रितेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनेकेषु योद्धा। शब्दार्थ श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कालोस्मि, काल यानी समय, अस्मि यानी मैं हूँ, लोक क्षय कृत, लोक यानी सारे लोकों को क्षयकृत नाश करने वाला, प्रवृद्ध यानी महान, लोकान समाहर्तुमीह, लोकान यानी समस्त लोगों को समाहर्तु नष्ट करने में, यह मन इस संसार में प्रवृत्त लगा रहता हूँ। रितेपि त्वाम, रितेपि यानी बिना या आपके अलावा न कभी नहीं भविष्यन्ति होंगे सर्वे, ये सारे लोग जो हैं आपके अलावा कोई नहीं बचेंगे आगे भविष्य में। ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा, ये यानी जो भी अवस्थिता यहाँ पर है, प्रत्यनीकेषु योद्धा विपक्ष में, योद्धा यानी सारे योग आपके साइड के और दूसरे साइड के सारे योद्धा आपको छोड़कर बाकी सब मर जाएंगे, क्योंकि मैं सबका विनाश करने के लिए संसार में काल के स्वरूप में आता हूँ। अनुवाद, भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से हमें श्लोक के तात्पर्य में समझाएंगे। हम सब ध्यान से श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था, इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक के ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद 1.2.25 में वचन है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र स, यस्य ब्रह्म च क्षत्रिम च, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, उभे भवतु ओदन, उन दोनों का ही भगवान के द्वारा कालक्रम से मृत्युर्यस्योपसेचनम, मृत्यु के रूप में भगवान हर किसी को हर किसी वस्तु का विनाश कर देते, क इत्था वेद यत्र, चाहे संसार में कोई भी हो। अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित हो जाते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्धभूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वह युद्ध ना करना श्रेष्ठ समझ रहा था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर यह है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से ही मृत हैं, काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। जैसा कि कल हमने भगवान श्री कृष्ण के इस विश्वरूप को देखकर अर्जुन बहुत ही भयभीत हो गए थे और अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, आख्या ही मे को भगवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध, आप मुझे बताइए कि इस भयानक रूप में आखिर आप हो कौन। क्योंकि अर्जुन देख रहा था कि सारे योद्धा उनके मुख में चूर्ण बनकर जा रहे थे और भगवान उनको है ना निगल रहे थे, तो फिर और भगवान के मुख से बहुत ही तेज निकल रहा था। सब लोग उसमें जल रहे थे। तेजो बिरा पूरी जगत समग्रम बासस्तवो ग्राह पतंति विश्व। तो बोल रहे थे कि अर्जुन बोल रहा था कि मैं देख नहीं सक रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कौन हो, आपका उद्देश्य क्या है। तो ये दो प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि आप हो कौन और आप का उद्देश्य क्या है। ना ही प्रजानामी तव प्रवृत्तिम, पहले तो आप मुझे ये बताओ आख्या ही मैं को भगवान उग्र रूपम, आप इतने भयानक रूप में कौन हो। और मुझे विज्ञातुम इच्छामि भवंत माध्यम, ना ही प्रजानामी तव प्रवृत्तिम, मैं आपके प्रयोजन को नहीं समझना चाह रहा हूँ। आपको आप आदि भगवान है, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपके प्रयोजन को जानना चाहता हूँ। तो आज अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान उत्तर दे रहे हैं। अभी भगवान विश्वरूप स्वरूप में ही है, अभी जो बोल रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण नहीं है, कृष्ण कृष्ण ही है परंतु कृष्ण स्वरूप में नहीं है। वो कौन से स्वरूप में है? विश्वरूप स्वरूप में, भगवान विश्वरूप के स्वरूप में बोल रहे हैं। लेकिन वेद व्यास जी वो ये जानते हैं कि जो बोल रहा है वो कौन है, श्री भगवान वाच। हालांकि अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं लेकिन अर्जुन बोल रहा है मैं तो आपको नहीं पहचान रहा हूँ, आप पता नहीं कौन हो, आख्या ही मेरे को भगवान, इतना उग्र रूप किसका है, मेरे दोस्त का, मेरे मित्र का तो नहीं है, आप कौन हो। लेकिन वेद व्यास जी जानते हैं कि यही वो कृष्ण है जो कभी काल स्वरूप में, कभी विश्व रूप में, कभी चतुर्भुज स्वरूप में अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं श्री भगवान उवाच, कि श्री भगवान अब बोल रहे हैं जो कि विश्व रूप स्वरूप में है। तो वो क्या क्या बता रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, आख्या ही मेरे को भगवान उग्र रूप, आप इस उग्र रूप में कौन हो। तो भगवान कहते हैं कालोस्मि, मैं काल हूँ, मैं वो समय हूँ जो किसी के लिए नहीं रुकता, मैं वो समय हूँ जिस समय के साथ संसार की प्रत्येक वस्तु का विनाश हो जाता है। और मैं क्यों आया हूँ, जब अर्जुन ने कहा ना ही प्रजाना में तव प्रवृत्ति, आपका प्रयोजन नहीं जानता हूँ, तो मेरा प्रयोजन सुनो अर्जुन, लोक क्षयकृत प्रवृद्ध हो, मैं इस संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं सबका, जो जितने अधर्मी हैं उन सब का विनाश करना चाहता हूँ। और लोकान समाहर तो मीह प्रवृत्त, मैं क्या कर रहा हूँ, लोकान जितने भी समस्त लोक हैं समाहर्त सबको नष्ट करूंगा। इह प्रवृत्त, यहाँ पर जितने भी, यह मतलब इस जगह पर, यहाँ संसार में जितने भी लोग हैं, मेरा काम है उन सबको नष्ट करना। मैं सदैव प्रवृत्त, मेरी प्रवृत्ति है, मेरा काम है इन सबको नष्ट करना। जो पैदा हुआ है मैं काल बनकर उसका नाश कर देता, उसकी हर एक वस्तु का सर्वनाश करता हूँ मैं। याद रखिए भक्तों कि इस संसार में समय के साथ साथ हर एक वस्तु का नाश होना अवश्यंभावी है। जो संसार में आया है, चाहे वो वस्तु है या व्यक्ति है, उसकी एक ही सच्चाई है। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से एक ही सच्चाई हमारे साथ चल रही है, वो ये है कि एक दिन हमारा विनाश होना है। हर एक वस्तु, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे बहुत लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इस भौतिक जगत में जो भी आई है उसका एक न एक दिन सर्वनाश होना संभव है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े धनी हुए, बड़े बड़े लोग हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन आज किसी का नामो निशान नहीं है। उसका मतलब क्या है, सबका विनाश हो गया। तो इस काल के भगवान ने जो काल का स्वरूप धारण किया है उससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम और हमारे पास जो कुछ भी है वो एक न एक दिन नष्ट होने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें इस काल की महिमा को जानना चाहिए। ये काल धीरे धीरे करके हर एक क्षण में हमारा सब कुछ ले रहा है, हमारा सब कुछ नाश कर रहा है। आज जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, उनकी उतनी आयु काल खा चुका है। काल एक अजगर की तरह हर एक वस्तु को खाए जा रहा है और हम समझ रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम एडवांस हो रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है। उन्नति नहीं हो रही है हमारी, तो दुर्दशा हो रही है। अगर हम अपने इस समय को सदुपयोग करके भगवत कृपा के लिए भगवत भक्ति करना शुरू नहीं कर रहे हैं तो एक एक क्षण में हमारा विनाश हो रहा है। और भगवान कहते हैं अर्जुन को, रिते पि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, रिते पि त्वाम, अर्जुन तुम्हारे अलावा। अर्जुन क्या है? भगवान ने अर्जुन को यह कहा है कि रिते पि त्वाम, तुम्हारे अलावा। तुम्हारे मतलब अर्जुन कौन है? भगवान ने पहले ही बता दिया, भक्तों सी में सखा चेती, तो मेरा भक्त है तथा मित्र है। यानी जो भगवान का भक्त बनेगा, भगवान का मित्र बनेगा, भगवान की शरण में आएगा, केवल वही बचेगा। इसे भगवान कह रहे हैं, रिते पि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन, तुम युद्ध करो या ना करो, इस जितने भी युद्ध भूमि में जितने भी जीव आए हैं, भविष्य में कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा लड़ना या ना लड़ना ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी इच्छा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं इस संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए आया हूँ, तो मैं इन सब का विनाश करके रहूंगा, तुम चाहो या ना चाहो। अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, अर्जुन की तो इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा का कोई महत्व नहीं है, तुम चाहो या ना चाहो, होगा वही जो पहले से निश्चित है। इसी श्लोक प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, किंतु भगवान का उत्तर यह है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनने वाले हैं। भगवान का काम है अधर्मियों का सर्वनाश करना। भगवान आए हैं इस भौतिक जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए, तो भगवान अपना कार्य करेंगे। भगवान कहते हैं, मैं आया हूं नाश करने के लिए, और आप चाहे युद्ध करते हो या ना करते हो, लेकिन मैं क्योंकि इन सब अधर्मियों का विनाश करने के लिए आया हूं, तो आप के चाहने से या युद्ध ना करने से ऐसा नहीं होगा कि ये सब नहीं मरेंगे। अगर ये आपके सहयोग से मरेंगे तो लाभ क्या होगा? आपको होगा कि श्रेय आपको मिलेगा। वरना मेरा काम है इन सब अधर्मियों का विनाश करना, वो तो मैं करके ही रहूंगा किसी न किसी तरीके से। इसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, रिते पि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, आपके अलावा। भगवान अर्जुन को बता रहे आपके अलावा। ये रितेपी ना दो तरीके से यहाँ पर यूज हो सकता है। रितेपी का मतलब होता है आपके अलावा, या दूसरा आपके बगैर, यानी आपके बिना। आपके अलावा बाकी सब जो है वो मर जाएंगे, या लेकिन अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो आपके बिना भी ये सब मर जाएंगे। क्योंकि ये जो जितने भी योद्धा हैं वो इस युद्ध भूमि में आए इसलिए हैं कि इनका नाश होगा। तो तुम्हारी भूमिका क्या है कि तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम पूरा करो। हम सब जीवों के लिए भगवान ये बात बता रहे हैं कि आपका जो कर्तव्य है बस आप उसे अच्छी तरीके से निभा लो। बाकी जो भगवान ने चाहा है, भगवान ने जो पहले से योजना है, भगवान की जो प्लानिंग है वो होने ही वाली है। इसलिए भगवान पहले कह चुके 2.47 में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका अधिकार केवल आपके कर्मों पर है, फल के अधिकारी आप नहीं हो। इसलिए आपको क्या करना है? केवल आपका कर्तव्य पूरा करना है। अर्जुन को भगवान उसके कर्तव्य के विषय में बता रहे हैं कि आप क्योंकि क्षत्रिय हो तो आपको अपना कर्तव्य पालन करने के लिए युद्ध करना है, केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए। क्योंकि भगवान ने मुझे ये ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की हैं तो मुझे ये कार्य करना है, ये सोचकर। बाकी तुमको स्वर्ग मिलता है, तुमको भौतिक जगत में राज्य मिलता है, तुमको आध्यात्मिक जगत में क्या मिलता है वो सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना कर्तव्य करो और ये सोच कर करो कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं आया हूँ, मेरा काम है इन सबका नाश करना। लोकान समाहार्त तू मीह प्रवृत्त, मैं सदैव इनकी जितने भी जीव आते रहते हैं, जितने भी भौतिक वस्तु हैं, उनका विनाश करता रहता हूँ। और तुम्हारे अतिरिक्त रिते पिताम न भविष्यन्ति सर्वे, कोई नहीं बचेगा। यो वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा, यो वस्थिता यानी यहाँ पर जितने भी स्थित हैं, प्रत्यनीकेषु विपक्ष जितने भी योद्धा हैं वो सब मारे जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बता दे तात्पर्य में कि विनाश इस संसार का अटल सत्य है, जो भी आया है उसको एक न एक दिन नष्ट होना है। और ये भगवान का स्वरूप है, जो काल है वो भी भगवान का स्वरूप है। वो धीरे धीरे संपूर्ण जीव जो भी संसार में वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका विनाश करते रहता है। तो यहाँ एक प्रश्न होता है कि भक्तों की भी तो मृत्यु होती है ना, जैसे हमने अभी कठोपनिषद का एक श्लोक पढ़ा, यस्य ब्रह्म च क्षत्रिम च, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, मृत्यु तो होती है। परंतु ये भगवान कह रहे हैं रिते पित्वाम न भविष्यन्ति, आपके अतिरिक्त, यानी वो जो विनाश हो रहा है वो अभक्तों का तो होता है, लेकिन भक्त तो को तो उसका वास्तविक धाम, वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक गोल प्राप्त होता है। तो वो नष्ट नहीं हो रहे हैं। भक्तों की यदि इस भौतिक शरीर की मृत्यु भी हो रही है तो भी उन्हें आध्यात्मिक शरीर में वही जो भगवान की सेवा यहाँ पर वो कर रहे हैं, वही सेवा करने का आध्यात्मिक जगत में अवसर प्राप्त होता है। तो भक्तों की मृत्यु तो समझो ऐसे है जैसे किसी कन्या का विवाह हो रहा है अपने प्रीतम के साथ, है ना। तो घर तो उसे भी छोड़ना पड़ता है ना, लेकिन जब वो घर छोड़ती है तो उसके हृदय में उल्लास होता है, आनंद होता है कि मैं अपने प्रीतम के घर जा रही हूँ। तो भले ही भौतिक शरीर तो भक्तों का भी विनाश होता है, लेकिन वो वास्तव में अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के धाम में अपने वास्तविक सेवा करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो ये भक्तों का सबसे उनके लिए भाग्य सौभाग्य का समय होता है जब उनकी मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु जो इस संसार में आया है उसको इस भौतिक जो ये पांच आठ तत्वों से बना हुआ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे जो मिलकर बना हुआ शरीर है उसका तो नाश होना ही वाला है, होना ही है। इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा युद्ध करना या ना करना इस बात पर निर्भर नहीं है कि मुझे तो नाश करना है, तो मुझे तो मैं तो आया हूँ नाश करने के लिए, आपकी भूमिका क्या है, आपको क्या करना है। तो वो बताते हैं अगले श्लोक में, बहुत बहुत सुंदर और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही ब्यूटीफुल श्लोक। भगवान कहते हैं तस्मात्मुत्तिष्ठयशोलभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्वराजं समृद्धं मय्यैवैते निहत्ता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन् तस्मात्त्वमुत्तिष्ठयशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्वराजं समृद्धं मय्यैवेति निहत्ता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचि तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तुम्हें खाली क्या करना है कि आप खड़े हो जाओ और अपना कर्तव्य करो, यश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। करूंगा मैं जो भी करना है उसका वास्तविक करने वाला तो मैं हूँ, लेकिन तुम यदि भूमिका निभाओगे कर्तव्य पूरा करने की तो तुम्हारा यश होगा। और अगर तुम तस्मात् तुम उत्तिष्ठ उठो और क्या करो, यश प्राप्त करो और क्या करो, जित्वा शत्रुन अपने शत्रुओं को जीत जाओगे, क्योंकि मेरी योजना से वो पहले से मर गए, तुम्हें तो सिर्फ श्रेय मिलेगा, यश मिलेगा। और अपने शत्रुओं को जीतो, वंश राज्यम समृद्धम, और जो समृद्ध राज है उसका भोग करो। मये वेते निहत्ता पूर्वमेव, मये वेते यानी भगवान बता रहे हैं मेरे द्वारा एते ये सब निहत्ता मारे गए हैं पूर्वमेव, मैंने तो अपने मेरी जो इच्छा है उसके अनुसार तो मेरे इनका वध होना निश्चित है। समझो मैंने इनको पहले से ही मरा हुआ घोषित कर दिया, पहले से मार लिया है, अब तुम क्या करोगे। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम्हें तो केवल निमित्त मात्र बनना। सव्य साचिन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा दक्ष होता है, एक्सपर्ट होता है ना युद्ध करने में, उसको बोलते सव्य साचिन। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम भले कितने ही दक्ष हो, तुम भले कितने ही एक्सपर्ट हो, ये युद्ध तुम्हारी दक्षता के कारण नहीं जीतोगे। ये युद्ध तुम जीतना जो है वो मेरी योजना है और मैं तुम्हें यश प्रदान करना चाहता हूँ, तुम केवल आगे बढ़ो और युद्ध करो। यहाँ पर हमें भगवान ये बता रहे हैं कि सारा विश्व जो है वो भगवान की योजना से ही चल रहा है, सब कुछ भगवान की योजना से हो रहा है। हमारा कर्तव्य क्या है कि भगवान की इस योजना में सहयोग करें, और अगर हम भगवान की इस योजना में सहयोग करते हैं तो क्या होता है, यशो लभस्व, तभी हमारी कीर्ति होती है, तभी हमारा यश होता है। अर्जुन का गुणगान आज तक हो रहा है, 5000 साल पहले भगवान के आदेश के अनुसार अर्जुन ने एक निर्णय लिया कि हाँ भगवान आपने मुझे जो कुछ भी बोला है वो करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन को पूरा करूंगा, आपने मुझे जो भी बोला। और आज तक हम उस अर्जुन का गुणगान कर रहे हैं, कितने राजा आए कितने चले गए, उस युद्ध भूमि में कितने आए कितने मर गए, लेकिन आज भी यदि भगवान के साथ भगवद गीता में किसी का नाम लिया जाता है तो वो है अर्जुन। उसका कारण क्या है, क्योंकि अर्जुन भगवान की योजना के अनुसार कार्य करता है। भगवान यही बात हमारे लिए भी कहते हैं, मये वेते निहत्ता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, उन सारे अपराधियों का वध तो मैंने पहले से कर दिया, तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है। शब्दात तस्मात् तुम उत्तिष्ठ, तस्मात् मतलब अतेव, तुम उत्तिष्ठ उठो, यशो लभस्व और यश को प्राप्त करो, जित्वा शत्रुन सारे शत्रुओं को जीतो, भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम और समृद्ध राज को भोगो। मैया वे एते निहत्ता पूर्वमेव, मैया मना मेरे द्वारा, एव निश्चय ही, एते ये सारे निहत्ता मारे गए हैं पूर्वमेव पहले से ही, निमित्त मात्रम केवल कारण मात्र भव बनो सव्य साचिन, हे सव्यसाची। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो, ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्य साचिन तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र ही हो सकते हो। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सव्य साचिन का अर्थ है युद्ध भूमि में अत्यंत ही कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। यानी अर्जुन बहुत ही दक्ष है, बहुत ही एक्सपर्ट है, वो चाहे तो मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं निमित्त मात्रम केवल कारण मात्र, यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा के अनुसार ही गतिमान होता है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। यहाँ भगवान के महत्ता, भगवान की जो योजना है उसकी महत्ता को बताते हुए श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो बेवकूफ है वो ही केवल ये बात सोचते हैं कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो बस बाई चांस हो रहा है। अकस्मात कुछ नहीं हो रहा है, बाय चांस कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो भगवान की प्लानिंग के साथ हो रहा है। तो अर्जुन को क्या बनना है, हमें क्या बनना है, केवल निमित्त मात्र बनना है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा हो या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है इसका प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालन की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीव के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर सुयोग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है तब तक वह बद्ध रहते हैं, किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना यानी इच्छा के को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है वह परम बुद्धिमान है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान ने यह भौतिक जगत की सृष्टि इस प्रकार से की है कि हम जैसे बद्ध जीवों को यह सु अवसर प्राप्त हो सके कि वो अपनी प्रवृत्ति को, जो हमारी बुद्धि है जो इस भौतिक जगत में प्रभुत्व जताना चाहती है, उसको बदले और भगवान की सेवा करके भगवान के नाम में वापस जाए। ये सु अवसर हमें इसीलिए मिला है और भगवान की योजना यही है कि हम सब भगवान की भक्ति करें और भगवत धाम को प्राप्त करें। लेकिन जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करता है यह परम बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? जो भगवान की इस योजना को समझ जाए और भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करे। लेकिन हम तब तक बद्ध रहेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे जब तक भगवान की इस योजना को समझ कर हम उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं। तो भगवान की योजना यही है, तो आज नहीं तो कल भटकते 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 भटक भटकते कोई ना कोई ऐसा समय आएगा कि हमें भगवत धाम में जाएंगे हम। लेकिन जितना जल्दी हम अपने इस कार्य को करें वही वास्तविक बुद्धि मानता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करता है वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा इसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने में मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह कृतार्थ है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जीव को आनंदित होने का एक सरल रास्ता बता रहे हैं कि जीव आनंदित तभी होगा जब वो भगवत भक्ति में आए, जब वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेगा। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था क्योंकि अर्जुन क्या समझ रहा था, युद्ध करने से अपराध लगेगा। अपराध तब लगता है जब हम भगवान की योजना के अनुसार कार्य नहीं करते, जब भगवान की आदेश अनुसार कार्य नहीं करते। और भगवान के आदेश अनुसार यदि अर्जुन कार्य करता है, भले ही वो संपूर्ण योद्धाओं को का वध करता है, अपने बाप का, अपने गुरु का, अपने दादा का भी वध करता है, लेकिन क्योंकि आदेश भगवान का है तो वो सदैव कृतार्थ रहेगा। क्योंकि हमें कोई भी कार्य करना है इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की दिव्य सेवा समझकर, यही जीवन की परिपूर्णता है। और भगवान की योजना पहले से ही बनी हुई है, क्या करना है किस तरह से करना है वो भी भगवान को पता है। हमें केवल भगवान की इस योजना में सहायक होना है। ये श्लोक बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ भरे हुए हैं, हम इनसे युद्ध करते करते थक गए हैं, लेकिन ये अनर्थ जो हैं वो मिटते ही नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम्हें इस अनर्थों को दूर करने की जरूरत नहीं है, तुम केवल एक काम करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त अनर्थों को दूर करूंगा। विदनोति सुहृत सम, भगवान जब कथा के रूप में कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो पहला काम क्या है? श्रवताम स्वकथाम कृष्ण పుణ్య శ్రవణ కీర్తనం. విదున్ రిద్యంతస్థో య భద్రాణి విదనోతి సుహృతసాం. ఆపు కేవల్ శరణాగతి కరణీయ, ఆపు కేవల్ భగవాన్ కి పవిత్ర కథాం కా శ్రవణ కరణా హై, ఆపు కేవల్ భగవాన్ కి పవిత్ర నామ కా జప్ కరణా హై. హృదయ కే అందర్ జో అనర్థ హై ఉస్కో సాఫ్ కర్నే కా ఠేకా తో భగవాన్ నే లియా హువా హై. ఆపకో హృదయ కే అందర్ బేటే అనర్థం కో దూర్ కర్నే కే లియే కోయి సర్జరీ కరానే కి జరూరత్ నహీ హై. వో ఖుద్ బ ఖుద్ హో జాయేగా, అనర్థం కా నాశ హో జాయేగా ఔర్ ఖుద్ బ ఖుద్ నిష్ఠా రుచి ఔర్ ప్రేమ తక్ పహుంచేంగే. హమే కేవల్ అప్నే కర్తవ్యం కో పాలన కర్నా హై. గురు మహారాజ్ నే జో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దియే ఉన్కో ఫాలో కర్నా హై. జైసే హమ్ జాంతే హై కి భగవాన్ కా జో పవిత్ర నామ హై నా, ఉస్కే ద్వారా హమారే సమస్త పాప, జీవ కే ఉత్నే పాప నష్ట హో సక్తే జితనే పాప వో కర్ భీ నహీ సక్తా. నామ్నో హి వ్యావతి శక్తి పాప నర్హరణి హరి, యావత్ కర్తుం న కర్తోపి పాతకం పాతకి నరః. హమారే అపరాధ తో ఉసి క్షణ నష్ట హో జాతే జబ్ హమ్ భగవాన్ కి పవిత్ర నామ కా జప్ కర్తే హై, లేకిన్ ఫిర్ భీ అనర్థ క్యూ నహీ జా రహే, క్యూంకీ హమ్ ఉన్ పాపీ ఇచ్ఛాఓ కో నహీ ఛోడ్తే. వో పాపీ ఇచ్ఛాయే హృదయ మే రహీ, లేకిన్ ఉన్ ఇచ్ఛాఓ కో భీ ఖతమ్ కర్నే కా క్యా తరీకా హై. బస్ నామ హీ సాధన హై ఔర్ నామ హీ సత్య హై. జైసే జైసే హమ్ నామ కో జప్ కర్తే రహేంగే తో హృదయ కి యే మలినతా భీ సమాప్త హో జాయేగీ. ఇస్లియే భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ కహతే హై, మయ్యే వేతే నిహత్తా పూర్వమేవ, మేరే యోజనా కే అనుసార్ యే పహలే సే హీ హో గయా హై. ఆపకో క్యా కర్నా హై, నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్య సాచ్యం, ఆపకో కేవల్ నిమిత్త పాత్ర బన్నా హై. ఉసీ ప్రకార్ సే ये जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है ना कि हर पृथ्वी त्याच यतर नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैबे मौरा नाम, कि चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार के जितने भी नगर और गांव हैं वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र को गूंजने की भविष्यवाणी की है. ये महाप्रभु का मिशन है. वो तो महाप्रभु ने कर दिया है और अगले 10,000 सालों तक विश्व भर में प्रचार होना है, होना है, होना है. हमें भगवान की इस योजना में कोई संदेह नहीं होना चाहिए. हमें तो खाली क्या करना है, जो भगवान ने आदेश दिया है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिम, कि हमें केवल भगवान के इस कार्य को पूरा करने के लिए निमित्त बनना है, केवल एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, केवल एक निमित्त बन के भगवान के इस कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना. इसीलिए भगवान आज एक बहुत ही सुंदर आदेश दे रहे हैं, तस्मात्वम उत्तिष्ठ यशो लभश्च, उठो अर्जुन खड़े हो जाओ, तुम्हें तो केवल युद्ध करना है निमित्त बनकर, बाकी तो यश मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ, वो तो तुम्हें आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मेरी योजना के अनुसार, मैं ये वेते निहत्ता पूर्व, मेरे तो योजना के अनुसार पहले से ये सब मर गए, इसलिए जित्वा शत्रुन, इन शत्रुओं को जीतो और वंश राज्यम समृद्धम, और तुम समृद्ध राज को, एक धार्मिक राज्य को भोगो. तो यहाँ भगवान ने बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक हमारे लिए श्लोक बताए हैं कि हमें केवल अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा समझकर कार्य करना है, बाकी सारी योजनाओं को सफल करना भगवान का काम है और भगवान ने पहले से ही कर दिया है, हमें केवल निमित्त बनना है. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं. हरे कृष्ण.